रचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
Oh,
जय श्री साई राम। भारत भूमि मेरी पावन भारत भूमि, सारे अवतार वहां पर आए अवतरित हुए। हम कहते हैं भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के 10 अवतार आए। मत्स्य अवतार हो, वामन अवतार हो, परशुराम हो, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, कहा जाता है जैसा कि मेरे आराध्य देव भगवान श्री सत्य साई बाबा जी ने कहा, जो हम 10 अवतारों की बात करते हैं उनमें से 2 अवतार ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जो हमारे लिए, मानवता के लिए, मानव के लिए मीनिंगफुल है, जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। एक है राम अवतार, दूसरे कृष्ण अवतार, श्री राम श्री कृष्ण। हालांकि मत्स्य अवतार भी आए, वरा अवतार भी आए, वामन अवतार भी आए, नरसिंह अवतार भी आए, उन अवतारों की अलग महिमा है, आने का अलग कारण है, लेकिन इस समय जो हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मीनिंगफुल अवतार्स, जो इस युग में आप कह सकते हैं राम और कृष्ण। जरा हम इतिहास पे ध्यान दें। कहा जाता है श्री राम सूर्य वंशी थे, सूर्य के वंश में आए थे, और श्री कृष्ण चंद्र के वंश में आए थे, कहा गया चंद्रवंशी। कहा जाता है जब भगवान श्री राम अवतरित हुए या उन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया, उस समय मौसम बहुत साफ था, आसमान साफ था, सूर्य सर के ऊपर था। राम जी का जन्म राजमहल में हुआ, आप कह सकते हैं द बेस्ट ऑफ द प्लेसेस। दिन में 12 बजे, मौसम साफ, नाम भी दिया गया राम, राव मां, साधारण सा, आसान सा, सिंपल सा, इजी सा, लिखना भी आसान हो, पढ़ना भी आसान हो, बोलना भी आसान हो, वैसा ही राम का चरित्र रहा, वैसा ही राम का कैरेक्टर रहा। ये भी कहा जाता है जब राम का जन्म हुआ तो आकाश मार्ग से देवी देवता भी उनके दर्शन हेतु अयोध्या पहुंच गए। दूसरी ओर चंद्रमा एक कहते हैं एक कोने में पड़ा हुआ रो रहा था। भगवान राम ने कहा पितु रोता क्यों है? कहा कि एक तो आपने सूर्य के वंश में जन्म लिया और दिन में 12 बजे सूर्य सर के ऊपर है, आसमान साफ है, सब लोग आपके दर्शन के लिए आए, मैं तो नहीं आ सकता, कि चंद्रमा तो रात को नजर आता है, हालांकि दिन में नजर आता है लेकिन उसका प्रकाश जो हमको प्रभावित करता है वो रात को होता है। राम जी बोले ऐसे रोने की क्या बात है, अगले अवतार में मैं तुम्हारे वंश में आ जाऊंगा, चंद्रवंश में आ जाऊंगा, जैसा कहा गया कि श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। चंद्रमा बोले भाई आपका अगला अवतार ना जाने कब आएगा, कितने हजारों वर्ष के बाद आएगा, तब तक मैं इंतजार करता रहूंगा, मेरे भाग्य में आपका नाम भी नहीं है, दर्शन भी नहीं। कहते हैं राम जी ने कह दिया चंद्रमा रोते क्यों हो, चलो मेरे नाम के बाद तुम्हारा नाम लगाया जाएगा, नाम पड़ेगा रामचंद्र। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा का अर्थ है बाउंड्रीज। दूसरी ओर श्री कृष्ण रात को 12 बजे पैदा हुए, जहां राम जी दिन में 12 बजे पैदा हुए, दूसरी ओर श्री कृष्ण राम माफ कीजिएगा, रात को 12 बजे पैदा हुए। राम जी का जन्म महल में हुआ, कृष्ण जी का जन्म कारागृह में हुआ, प्रिजन में हुआ। राम जी के जन्म के समय बाहर का वातावरण, बाहर का मौसम बहुत सुहावना था, और कृष्ण जी के जन्म के समय बाहर का मौसम मूसलाधार वर्षा हो रही थी, कड़ाके की बारिश, जोरदार बारिश। एक तो मौसम खराब, रात को 12 बजे जन्मे, वो भी कारागृह में, द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन कह सकते हैं। कृष्ण के नाम पे ध्यान दिया आपने, कहा आधा रा नीचे, आधा क्ष आधा रा कृष्ण, लिखने में कोई शब्द पूरा नहीं आता इसके अंदर, देखा जाए तो बोलने में भी कठिनाई। और खासकर आजकल के बच्चे जो प्रदेश में रह रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, उनसे पूछा जाए अड़ा, वह नहीं बोल पाएंगे। जब कृष्ण का नाम अंग्रेजी शब्दावली में, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी लिपि में माफ कीजिएगा, लिखा जाता है, बोला जाता है KRISHNA कृष्णा। कई लोग लिखते हैं का KRSNA कृष्णा, लेकिन कृष्ण रण जो है अंग्रेजी भाषा में है ही नहीं। चलो नाम को छोड़िए, कहने का तात्पर्य है जहां पर राम जी का नाम इतना सिंपल आसान सा और कृष्ण जी का टेढ़ा मेढ़ा। राम जी दिन में पैदा हुए 12 बजे, कृष्ण जी रात को पैदा हुए 12 बजे। राम जी पैदा हुए महल के अंदर, कृष्ण जी पैदा हुए कारागृह में। राम जी पैदा हुए जब मौसम साफ सुथरा था, सुहाना था, कृष्ण जी पैदा हुए जब बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। राम जी का नाम आसान, कृष्ण जी का नाम टेढ़ा मेढ़ा। राम जी का चरित्र बिल्कुल सिंपल साधारण, टू द पॉइंट, वैल्यू ओरिएंटेटेड, प्रिंसिपल ओरिएंटेटेड, मर्यादा का पूरा पालन किया। और दूसरी ओर कृष्ण जी महाराज, कोई सोच सकता है कभी मुंह में मिट्टी खा ली, मुंह खोल के सारा ब्रह्मांड दिखा दिया, कभी सांप के सर पे खड़े होकर नाच रहे हैं, कभी गोपिकाओं की मटकियां फोड़ रहे हैं, किलकारी मार के खुश हो रहे हैं, कभी गोपियों के घर में जाके माखन चुरा रहे हैं, कहां पूतना को मार रहे हैं, कंस को मार दिया, शिशुपाल को मार दिया, कभी गैया के साथ बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं, संसार को मंत्र मुग्ध कर रहे हैं, चारों ओर गोपियां नाच रही हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं जो आदमी बांसुरी बजा रहा हो वही युद्ध के मैदान में खड़े होके अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ा रहा है, अर्जुन जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम्हारे सामने जो सेना खड़ी है पहले ही मरी हुई है, तुम अपने यश को प्राप्त करो, अपना कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो, अपने गांडीव को उठाओ, मार डालो इनको, भीष्म पितामह हो या गुरु द्रोणाचार्य हो या कृपाचार्य हो या अश्वत्थामा हो, उठाओ बाण, महावीर कर्ण को मारो। कमाल की बात, कोई काम सीधा साधा नहीं कृष्ण के जीवन में, लेकिन संदेश जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से बाहर निकालने वाला। जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे आराध्य देव भगवान बाबा ने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई देखो राम सूर्य वंशी है, सूर्य बुद्धि का कारक है, सन सिग्निफाइज इंटेलेक्ट, कृष्ण चंद्रवशी है और चंद्रमा मन का कारक है, मून सिग्निफाइज माइंड। विचार कीजिएगा, बुद्धि और मन। भागवतम के अंदर भी ये दिया गया है, एक महापुराण है भागवत पुराण, असल में उत्कर्ष अर्थ है भागवतम, भागा वाता मा। भगवान बाबा ने कहा भा का मतलब भक्ति, गा का मतलब ज्ञान, वा का मतलब वैराग्य, ता का मतलब तत्वम और मा से मुक्ति। आप चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, वो ज्ञान आपको कदापि जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त नहीं करेगा, अगर ज्ञान से पहले आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति ना आई हो तो। भागवतम के अंदर 10 अवतारों की कथा और ज्यादा जोर देगा राम और कृष्ण पर, जैसा कि भगवान बाबा ने कहा कि कलयुग में राम और कृष्ण अवतार आर मोर मीनिंगफुल टू द मैनकाइंड, टू द ह्यूमैनिटी, मानव और मानवता के लिए, मानव जाति के लिए राम और कृष्ण को समझना अनिवार्य है। भाव से भक्ति, जब भक्ति क्या है, भक्ति का अर्थ है लव फॉर गॉड, परमात्मा के लिए प्रेम। परमात्मा के लिए प्रेम होगा तो आपके बाद में जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो प्रेम से परिपूर्ण होगा, उसमें से प्रेम का रस टपक रहा होगा, चू रहा होगा, अदरवाइज अन्यथा ये ज्ञान मानव को खोखला कर देता है, दीमक लग जाती है बुद्धि के ऊपर, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जो आपको मुक्त ना करा पाए। इसलिए कहा गया पहले भक्ति का रास्ता चाहिए, फिर ज्ञान का, फिर आपको मिलेगा वैराग्य। वैराग्य क्या चीज है? उच्चाटन की भावना, मन उच्चाट हो गया, मन हट गया। कभी आप देखिएगा रोजमर्रा की जिंदगी में, कभी आप शमशान घाट गए होंगे, किसी का शरीर जलाया गया, वहां पर खड़े हुए संबंधी निकट मित्र कहते कमाल है, कल तो मैंने इस व्यक्ति से हाथ मिलाया था, ठीक ठाक था, अचानक चला गया, क्या जीवन है, कुछ पता नहीं लाइफ का, तो जीवन का कब सांस रुक जाए। कल तक जो शरीर हंस रहा था, खेल रहा था, मचल रहा था, चल रहा था, आज घर वाले उसको अर्थी में लेकर आए हैं, शमशान घाट में रख के उसका भस्म कर दिया, उसके राख कर डाली, मन उचाट हो गया। शमशान घाट में खड़े हुए लोग आपस में बात करते हैं, बोलते हैं भाई देखो ये क्या जीवन है, कुछ नहीं, बेकार, लाइफ इज यूजलेस, लाइफ इज वर्थ नथिंग। लेकिन जैसे ही शमशान घाट से आप बाहर निकलते हैं, चार दीवारी से बाहर निकलते हैं, आपका मोबाइल फोन बढ़ता है, वहां से आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी कितने बिक रही है, कहां पर क्या दुकान मिली है, कहां पर क्या बिजनेस मिल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, एकदम आप शमशान घाट से बाजार में पहुंच गए। जो उच्चाटन की भावना थी वही समाप्त हो गई। विचार कीजिएगा जरा आप, जो वैराग्य की बात कर रहे हैं, वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि संसार को छोड़ दे, संसार से मन उठ जाए, वैराग्य का अर्थ है संतुलित हो जाना, बैलेंस हो जाना, सर्दी हो, गर्मी हो, दुख हो, सुख हो, कोई आपकी प्रशंसा के गीत गाए या कोई आपकी बुराइयां करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हु केयर्स, कोई आपसे प्रेम से बात करे, हु केयर्स, कोई आपसे डांट के बात करे, हु केयर्स, हर हाल में, हर स्थिति में अपना मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन बनाए रखना, उसको वैराग्य कहा गया। जहां बुद्धि और मन बैलेंस हो जाएं, विचार कीजिएगा, वाह के बाद आता है तत्वम, रियलाइजेशन। क्या रियलाइज कर रहे हैं आप? रियलाइजेशन कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम द सोल, आई एम आई, मैं शरीर नहीं हूं, ये मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये भी कहना गलत है, इसमें भी द्वैत भाव आ जाता है, मैं आत्मा हूं, मैं और आत्मा, कहना यूं ठीक होगा, मैं अहम। भगवान बाबा ने नहीं बताया पहले दासो अहम, मैं परमात्मा का दास हूं, दासो अहम, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, सो अहम, जो तुम वही मैं हूं, सो अहम, आई एंड यू आर वन, अहम आई एम आई। विचार कीजिएगा। तत्वम के बाद आती है मुक्ति। मुक्ति क्या है? अरे आपने घर के लिए उधार लिया, बैंक से मॉर्गेज ली हुई है, उसको पे कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ये सोचते एक दिन आप इसको पे ऑफ कर देंगे, और जिस दिन पे ऑफ हो जाता आप कहते हैं चलो अभी मेरा लोन पे ऑफ हो गया, मेरी मॉर्गेज पे ऑफ हो गई, अब मैं एक बंधन से मुक्त हो गया। लेकिन दूसरे कई बंधन हम खोल के बैठ जाते हैं, कई बंधन बना के बांध के बैठ जाते हैं। मुक्ति का अर्थ इतना है कि जन्म आपका दोबारा ना हो। मृत्यु तो होगी, अगर आप जन्मे हैं तो मृत्यु का अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन दोबारा आपका जन्म ना हो उसको कहा गया मुक्ति। नो रीबर्थ, देयरफॉर नो डेथ। वो कब होगा? जब आप राम और कृष्ण को समझेंगे। राम का अर्थ है सूर्य, सूर्य का अर्थ है बुद्धि, चंद्रमा कृष्ण की बात कर रहे हैं हम लोग, मन की बात हो रही है यहाँ पर। कहा गया पहले राम की पूजा की जाए क्योंकि राम पहले आए, ताकि हमारी बुद्धि पहले पवित्र हो। इंटेलेक्ट नीड टू बी प्यूरिफाइड। बुद्धि की शुद्धि के लिए सूर्यवंशी श्री राम के चरित्र की पूजा की जाती है, चरित्र को समझा जाता है, उसको पढ़ा जाता है, उस पर चलने का प्रयास किया जाता है। रामचंद्र की मर्यादा का पालन करेंगे तो मन का रावण मर जाएगा, मन का काम मरेगा, तब श्री कृष्ण वहां पर पधारेंगे। जहां राम वहां काम नहीं है। इसलिए कहा गया कि अगर मन क्या है, मन में वासनाएं हैं, व्हाट इज माइंड मेड ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, मन में है क्या, किससे बने है? मन एक जाल है, मन एक गुत्थी है, मन एक बंडल है, ऑफ व्हाट, किस चीज का, डिजायर का, इच्छाओं का। इतनी वासनाएं हैं कि आप एक वासना पूरी करते नहीं, हजारों और सामने खड़ी होती है, कहां कहां से टपक पड़ती हैं। इसलिए कहा गया अगर आप अपनी वासनाओं को प्रभु के मार्ग पे छोड़ेंगे, आई रिपीट, अगर आप अपनी वासनाओं को प्रभु के मार्ग पे छोड़ेंगे, इफ यू गिव डायरेक्शन टू योर डिजायर्स, योर इंटेंस डिजायर्स, तो आपकी वासना आपकी उपासना बन जाएगी, आपकी पूजा बन जाएगी, वही आपको मुक्ति तक लेकर जाएगी। वासना जीवन में कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी करते हैं, डू इट फॉर गॉड। गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं बैठने के लिए, बोलिए भगवान पहले आए बैठे, स्वामी प्लीज टेक ए सीट। काम पे जा रहे हैं, भगवान से बात कीजिए। खाना बना रहे हैं, भगवान से बात कीजिए। खाना खा रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं अंदर, भगवान मैं आपके लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा हूं। एवरी एक्शन हैज टू बी डायरेक्टेड एंड डेडिकेटेड टू गॉड। जहां बुद्धि और मन दोनों संतुलित हो जाए, बुद्धि प्यूरिफाई हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए, तभी तो मन के अंदर अच्छे भावनाएं आएंगे मेरे भाई। इसलिए कहा गया पहले राम की पूजा, फिर कृष्ण की। विचार कीजिएगा, बुद्धि पवित्र हो गई तो श्री कृष्ण मिलेंगे, श्री कृष्ण मिलेंगे तभी आगे जाएंगे। राम को मर्यादा कहा गया, कृष्ण को प्रेम कहा गया। मर्यादा और प्रेम से जीवन को उतारोगे तो सुखी रहोगे। मर्यादा ही प्रिंसिपल, मर्यादा ही डिसिप्लिन, मर्यादा ही बाउंड्रीज। राम चाहते तो कितनी पत्नियां ला सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मर्यादा का पालन किया। कमाल की बात है, माता सीता को राम उठा के ले गया, राम जी माया के वश में रो रहे थे और कृष्ण जी ने माया को अपने वश में कर रखा था। नहीं फर्क पड़ता, ह्यूमन लेवल में नहीं फर्क पड़ता, लेकिन इतना फर्क पड़ता है अगर हम मर्यादा का पालन करें, मन में प्रेम को लेके बैठे जीवन आसान हो जाएगा। भगवान बाबा मेरे आराध्य थे, बोलते बोलते रह गए इस बात को, लव ऑल सर्व ऑल, सबसे प्रेम करो। प्रेम का अर्थ है सबके अंदर ईश्वर के दर्शन करो, सी गॉड इन एवरी बॉडी, सबके अंदर दिव्य स्वरूप के देखो। इसलिए मेरे आराध्य देव हमेशा बोलते थे दिव्य स्वरूप हो, आत्मा स्वरूप हो, एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन आत्मा, एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन डिविनिटी, एम्बॉडीमेंट ऑफ डिविनिटी, आत्मा स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव। विचार कीजिएगा, राम और कृष्ण फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से अगले सप्ताह। जय श्री साई राम।
नंदलाला नंदलाला दया करो
miss your favorite